एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम विश्व साहित्य के एक ऐसे शिखर पर बात करने जा रहे हैं जहां विचार और भावनाएं जैसे तूफान की तरह आपस में टकराती हैं।
हाँ, फ्योडोर दोस्तोयेवस्की का अंतिम और शायद सबसे महान उपन्यास द ब्रदर्स कारामाज़ोव।
बिल्कुल, दोस्तोयेवस्की वो रूसी लेखक जिन्होंने इंसान के आत्मा की, आप कह सकते हैं, अंधेरी गुफाओं और उजली चोटियों दोनों की ही यात्रा अपने लेखन में की है।
और उनकी अपनी जिंदगी भी तो आप देखें तो किसी महाकाव्य जैसी ही थी, है ना? मिर्गी के दौरे, वो जुए की लत।
हाँ, मौत की सजा के बिल्कुल मुहाने से वापसी, फिर साइबेरिया का वो कठोर जीवन।
बिल्कुल, और ये सारे तजुर्बे उनके किरदारों में जैसे धड़कते हुए महसूस होते हैं। उनके लेखन को अक्सर मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहते हैं। क्या
सही, मतलब बाहरी घटनाओं से ज्यादा किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उनकी सोच, उनके मन के द्वंद, उनकी जो कश्मकश है, उस पे ज्यादा जोर रहता है।
हाँ, दोस्तोयेवस्की के यहाँ किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले मोरे नहीं होते, वो तो जैसे चलते फिरते जीते जागते उचार होते हैं।
और इसी खासियत को आलोचक मिखाइल बाख्तिन ने बहुस्वरता कहा था, पॉलीफोनी।
पॉलीफोनी, हाँ, मतलब जहाँ हर किरदार, चाहे वो संत हो या पापी, अपनी बात, अपनी विचारधारा को पूरी शिद्दत और दार्शनिक गहराई से रखता है।
और ऐसा लगता है कि लेखक किसी का पक्ष नहीं ले रहा।
हाँ,
सबको अपनी आवाज मिली है।
और द ब्रदर्स कारामाज़ोव तो जैसे इन्हीं विचारों का महासंग्राम है। एक परिवार की कहानी भी है, एक कत्ल की गुत्थी भी,
और साथ ही आस्था, संदेह, नैतिकता, मतलब ईश्वर के अस्तित्व जैसे बड़े गहरे सवालों से सीधी टक्कर भी है।
हाँ, ये उपन्यास पढ़ना मतलब एक साथ कई सफर पे निकल जाना है।
सही कहा। तो आज हम इसी बहुआयामी कृति की जटिलता में थोड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। कहानी के मुख्य पड़ाव देखेंगे, उन यादगार किरदारों के भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझेंगे,
और उन गहरे दार्शनिक सवालों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे जो दोस्तोयेवस्की हमारे सामने रखते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए 19वीं सदी के रूस के उस काल्पनिक शहर स्कोपोप्रिगोनियस्क में चलते हैं जहां ये कारामाज़ो परिवार का पूरा ड्रामा चल रहा है।
कहानी के बिल्कुल केंद्र में है ये बिखरा हुआ सा, जैसे भावनाओं के ज्वालामुखी पर बैठा कारामाज़ोव परिवार। और इस परिवार के मुखिया हैं फ्योदोर पावलोविच कारामाज़ोव, एक अय्याश विदूषक जैसे बिल्कुल मतलबी पिता, जिसे अपने बेटों की कोई फिक्री नहीं है।
हाँ, वो जैसे वासना और नैतिक पतन का एक जीता जागता रूप है। अपनी ही गिरावट में जैसे उसे एक अजीब सी खुशी मिलती है।
और माहौल तब और बिगड़ जाता है, विस्फोटक हो जाता है, जब उनके तीनों बेटे एक साथ अपने गृहनगर लौट आते हैं।
हाँ, तीनों बेटे, सबसे बड़े दिमित्री, जिन्हें मित्या भी कहते हैं, वो जुनून और सम्मान के बीच झूलते एक पूर्व फौजी हैं।
फिर दूसरे इवान, वो एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी हैं, लेकिन तर्क और नास्तिकता की राह पर चलते हुए जैसे अकेला पड़ गया है।
और सबसे छोटे अलेक्सी यानी अल्योशा, वो मठ में एक नौसिखिया भिक्षु है, सीधा साधा, करुणा और आस्था का प्रतीक।
और आते ही पिता और बेटों में, खासकर दिमित्री और पिता में ठन जाती है। वजह? विरासत और एक स्थानीय औरत ग्रुशेंका।
हाँ, ग्रुशेंका, जिसके आकर्षण में पिता और पुत्र दोनों हैं, टकराव तो होना ही था।
मामला इतना बिगड़ता है कि उन्हें शहर के एक बहुत सम्मानित संत हैं, एल्डर जोसिमा, उनके पास मठ में जाना पड़ता है सुलह के लिए।
लेकिन वहां सुलह कहाँ होती है, वहां तो बस कड़वाहट और नफरत का ही नजारा देखने को मिलता है। परिवार की जो दरारें हैं वो और गहरी हो जाती हैं।
बिल्कुल, और यहीं से कहानी उस तरफ मुड़ती है जो उपन्यास की धुरी है, पिता फ्योदोर पावलोविच की निर्मम हत्या।
हाँ, अब ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रहा, अब ये एक रहस्यमयी कत्ल की कहानी बन गया है।
लेकिन दोस्तोयेवस्की का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कातिल कौन है।
नहीं,
सवाल उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, ज्यादा गहरा है। उपन्यास की पूछता है, इस हत्या के लिए नैतिक रूप से कौन जिम्मेदार है?
क्या सिर्फ वो जिसने असल में चाकू चलाया, या वो सब जिनके दिलों में, जिनके विचारों में पिता की मौत की ख्वाहिश पल रही थी?
हाँ, दिमित्री तो खुलेआम पिता को मारने की धमकी देता फिरता है। इवान अपने तर्कों से एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है।
और चौथा बेटा, जिसे अवैध माना जाता है, स्मर्दियाकोफ, जो घर में नौकर है, वो इन सब बातों को सुन रहा है। और शायद
यहीं पर इवान का वो मशहूर सवाल गूंजता है, अगर ईश्वर नहीं है और आत्मा अमर नहीं है तो क्या सब कुछ जायज है?
ये सवाल सिर्फ इवान का नहीं रहता फिर, ये तो पूरे उपन्यास का केंद्रीय द्वंद्व बन जाता है। क्या नैतिकता के लिए ईश्वर का होना जरूरी है?
बिना ईश्वर के डर के या स्वर्ग के लालच के इंसान सही और गलत का फैसला आखिर कैसे करेगा?
और इन सवालों के जवाब हमें कहीं ना कहीं इन चार भाइयों के किरदारों में,
बिल्कुल,
उनकी जिंदगी की यात्राओं में मिलते हैं।
वो सिर्फ इंसान नहीं है, वो जैसे मानव स्वभाव के अलग अलग रंगों के प्रतीक बन जाते हैं। दिमित्री, वो बेलगाम जुनून, अच्छाई बुराई के बीच झूलता हुआ, जिसे कारामाज़व कामुकता भी कहा गया है।
इवान, वो संदेहवादी तर्क,
जी,
बुद्धि की अपनी ताकत और उसका अपना बोझ।
अलियोशा, यानी सक्रिय प्रेम, बिना किसी स्वार्थ की सेवा और दिल से निकली आस्था।
और मर्द्याकुव, वो जैसे बिगड़ी हुई बुद्धि, मन में भरी कड़वाहट और नैतिक रूप से बिल्कुल खोखलापन।
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये तनाव और गहरे होते जाते हैं। दिमित्री पैसों के लिए बुरी तरह परेशान है, उसे अपनी मंगेतर कतरीना को पैसे लौटाने हैं ताकि वो ग्रुशिंका के साथ भाग सके।
और इसी परेशानी में, इसी हताशा में, वो पिता पर हमला तक कर बैठता है। एक तरह से आने वाली घटना का संकेत मिल जाता है।
दूसरी तरफ एल्डर जोसीमा अलियोशा को मठ से बाहर दुनिया में भेजते हैं। कहते हैं कि जाओ, लोगों के बीच रहो, उनकी सेवा करो।
और इससे होता यह है कि अलियोशा सीधा अपने परिवार के इस तूफान के बीचों बीच आ जाता है।
और फिर आता है उपन्यास का वो हिस्सा जो शायद इसका दार्शनिक दिल है, इवान और अलियोशा की सराय में वो मुलाकात। यादगार है वो?
हाँ, जहाँ इवान अपनी वो मशहूर कविता सुनाता है, द ग्रैंड इंक्विजिटर।
क्या कमाल की कल्पना है कि 15वीं सदी के स्पेन में जब ईसा मसीह दोबारा धरती पर आते हैं, तो चर्च का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, ग्रैंड इंक्विजिटर, वो उन्हें गिरफ्तार करवा लेता है।
जबरदस्त रूपक है ये तो। इंक्विजिटर का तर्क ये है कि ईसा ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा का जो तोहफा दिया है, वो असल में उसके लिए एक बोझ है।
हाँ, कि इंसान आजादी से डरता है, उसे तो बस रोटी चाहिए, चमत्कार चाहिए, रहस्य चाहिए, कोई अधिकारी चाहिए जो उसे बताए कि क्या करना है, भले ही इसके लिए उसे अपनी आजादी ही क्यों ना बेचनी पड़े।
और चर्च ने इंसान से यही आजादी छीनकर उसे एक तरह से खुश किया है। ये ईश्वर के बनाए विधान के खिलाफ इवान का सबसे शक्तिशाली बौद्धिक विद्रोह है।
और यही वो साफ साफ कहता है कि अगर ईश्वर के बनाए नियम नहीं मानने तो फिर सब कुछ मुमकिन है, सब जायज है।
इसी बौद्धिक विद्रोह के सामने दूसरी तरफ हमें एल्डर जोसीमा के अंतिम उपदेश मिलते हैं, जिन्हें अलियोशा लिखता है।
जोसीमा बात करते हैं सक्रिय प्रेम की, मतलब सिर्फ ख्यालों में इंसानियत से प्यार करना नहीं, बल्कि असल जिंदगी में मुश्किलों के बावजूद सामने वाले इंसान से प्यार करना।
वो ये भी कहते हैं कि हम सब एक दूसरे के गुनाहों के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं।
और नरक, नरक कहीं और नहीं बल्कि प्रेम करने की क्षमता खो देना ही नरक है।
इवान का वो ठंडा काटने वाला तर्क और जोसीमा का ये गर्म जोशी भरा दिल से निकला विश्वास, उपन्यास की पूरी नैतिक दुनिया इन्हीं दो ध्रुवों के बीच घूमती रहती है।
और फिर आखिरकार वो रात आती है, फ्योदोर पावलोविच का कत्ल हो जाता है।
दिमिकी हताशा में पिता के घर जाता है, वहां से भागते हुए जो बूढ़ा नौकर है ग्रिगोरी उसे जख्मी कर देता है, उसे लगता है वो मर गया।
और फिर गुशंका के साथ पकड़ा जाता है, उसके कपड़ों पर खून लगा है, उसके पास पैसे हैं, सारे सबूत, परिस्थितिजन्य सबूत उसी के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहे होते हैं।
पूछताछ में दिमित्री का वो उन्मादी बर्ताव सच्चा है, पर इतना उलझा हुआ है कि वो उसे और फंसा देता है।
हालांकि शक की सुई धीरे धीरे स्मिर्दाकॉफ की तरफ भी घूमती है, उसे हत्या की रात कथित तौर पर मिर्गी का दौरा पड़ा था, बड़ा सुविधाजनक दौरा था वो।
हाँ, शक पैदा करने वाला संयोग। उपन्यास का आखिरी हिस्सा फिर दिमित्री के मुकदमे का है और वो अदालती कार्यवाही कम एक तमाशा ज्यादा लगता है।
वकीलों की वो लंबी लंबी बयानबाजी, मनोविज्ञान का कैसे ऊपरी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सबूतों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दोस्तों ये उसकी जैसे पूरी कानूनी न्याय व्यवस्था पर ही एक तीखा व्यंग्य कर रहे हैं।
बिल्कुल, और इसी दौरान कहानी का असली खलनायक भी सामने आ जाता है, स्मिर्दाकॉव।
हाँ, वो पहले इवान के सामने अपना जुर्म कबूल करता है और कहता क्या है कि उसने तो इवान के ही दर्शन पर अमल किया है, सब कुछ जायज है।
ये कबूलनामा इवान को अंदर तक तोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि उसके विचारों का नतीजा क्या निकला।
और फिर स्मर्द्या को आत्महत्या कर लेता है, जैसे अपने उस खोखले दर्शन, उस शून्यवाद का अंतिम प्रमाण देते हुए।
अपराध बोध से लगभग पागल हो चुका इवान अदालत में सच बताने की कोशिश करता है, पर उसकी गवाही को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उसे दिमागी बुखार का असर मानकर खारिज कर दिया जाता है।
और अंत में दिमित्री की पुरानी मंगेतर कतेरीना, वो अपमान और जलन में आकर दिमित्री का लिखा एक पुराना खत अदालत में पेश कर देती है,
जिसमें उसने पिता को मारने की धमकी दी थी, और वो खत दिमित्री के ताबूत में आखिरी कील साबित होता है।
दिमित्री को दोषी ठहरा दिया जाता है, साइबेरिया में 20 साल की सजा।
लेकिन उपन्यास यहाँ खत्म नहीं होता, ये बात भी गौर करने वाली है। दोस्तोयेव्स्की हमें दिमित्री के भाग्य के आगे ले जाते हैं।
उपसिंघानर का जो केंद्र है वो अलियोशा है और कुछ स्कूली बच्चे हैं, खासकर एक बीमार बच्चा इल्योशा जिसकी मौत हो जाती है।
इल्योशा के अंतिम संस्कार के बाद अलियोशा बच्चों को एक बहुत ही मार्मिक, दिल छू लेने वाला भाषण देता है।
वो कहता है कि जिंदगी में आगे चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करो, लेकिन इस दुख की घड़ी में जो तुमने एक दूसरे के लिए प्यार महसूस किया है और अपने दोस्त इल्योशा की जो अच्छी यादें हैं उन्हें कभी मत भूलना।
यही यादें भविष्य में तुम्हें नेकी और हिम्मत देंगी। ये एक बहुत ही कह सकते हैं आशावादी अंत है। कानूनी न्याय भले ना मिला हो, लेकिन मानवीय करुणा, स्मृति और प्रेम का बीज जैसे अगली पीढ़ी में बो दिया गया है।
और किरदारों की अपनी यात्राएं भी देखिए, कितनी बदल जाती हैं वो। दिमित्री की यात्रा दुख से होकर शुद्धि की ओर जाती है।
हाँ, वो सजा को स्वीकार करता है, वो एक रोते हुए बच्चे का सपना देखता है जैसे वो आध्यात्मिक रूप से जाग रहा हो। दुख उसके लिए सजा नहीं रहता, बल्कि आत्मा को मांझने का, साफ करने का जरिया बन जाता है।
इवान का सफर दूसरी तरफ बहुत दुखद है, त्रासद है। वो अपने ही विचारों के बोझ तले दबकर पागलपन के कगार पर पहुंच जाता है।
स्मर्दियाकोव जैसे उसका एक बिगड़ा हुआ आईना बन जाता है, और शैतान के वो मतिभ्रम उसे उसके अंदर के खालीपन का एहसास कराते हैं।
उसका हश्र जैसे एक चेतावनी है कि बुद्धि अगर प्रेम और नैतिकता से कट जाए तो कितनी विनाशकारी हो सकती है।
और अलियोशा, उसकी आस्था की भी परीक्षा होती है, खासकर जब जोसीमा की मृत्यु के बाद उनका शरीर सड़ने लगता है, जबकि लोगों को चमत्कार की उम्मीद थी।
लेकिन वो टूटता नहीं है, वो दुनिया में जाता है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है, वो बड़े बड़े उपदेश नहीं देता बल्कि चुपचाप मदद करता है, प्यार बांटता है। उसके लिए आस्था कोई किताबी सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, कर्म है।
और ग्रुशेनका का किरदार भी देखिए, शुरू में वो एक मोहक, शायद खतरनाक औरत लगती है, लेकिन वो भी बदलती है, दिमित्री के दुख में उसका साथ देती है।
और वो जोसिमा की सुनाई प्याज की कहानी याद करती है, छोटी सी कहानी पर गहरे अर्थ वाली। वो दिखाती है कि प्रेम में मुक्ति देने की, उद्धार करने की शक्ति होती है।
कतेरीना का अभिमान उससे नीचे ले जाता है, जबकि ग्रुशेनका का प्रेम उसे ऊपर उठाता है।
ये सारे पात्र हमें सीधे उपन्यास के जो मूल विषय हैं उन तक ले जाते हैं, जैसे आस्था और संदेह का वो शाश्वत संघर्ष।
क्या ईश्वर है? अगर है तो दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है? इवान के सवाल बहुत तीखे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। दोस्तोयेव्स्की उनका कोई आसान बना बनाया जवाब नहीं देते।
लेकिन जोजेमा और अलियोशा के जरिए वो दिखाते हैं कि आस्था शायद तर्कों से परे है, वो प्रेम और करुणा के अनुभव में जी जाती है।
फिर वो स्वतंत्र इच्छा और नैतिक जिम्मेदारी का सवाल, क्या इंसान अपनी मर्जी से चुनने के लिए आज़ाद है?
दोस्तोयेव्स्की का जवाब साफ लगता है, हाँ है। उनके किरदार किसी भाग्य या माहौल की कठपुतलियां नहीं है, वो चुनाव करते हैं और उन चुनावों के नतीजे भुगतते हैं।
इवान की त्रासदी शायद यही है कि वो अपने बौद्धिक आज़ादी की नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने से कतराता है।
निर्दोषों की पीड़ा, खासकर बच्चों की पीड़ा का सवाल, इवान इसे बहुत जोर से उठाता है।
दोस्तोयेव्स्की इसका कोई तार्किक समाधान नहीं देते, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जवाब देते हैं, जोसीमा की वो सबकी जिम्मेदारी वाली सीख,
दिमित्री की उस बच्चे के लिए अचानक जागी करुणा, और अलियोशा का वो सक्रिय प्रेम। जैसे पीड़ा का जवाब बहस में नहीं, हमदर्दी में है।
और प्रेम, ये उपन्यास तो जैसे प्रेम के अलग अलग रूपों का एक महाकोश है। फ्योदोर की वो निकृष्ट वासना,
कतेरीना का वो अभिमान से भरा आत्मपीड़क प्रेम,
दिमित्री और ग्रुशेनका का वो जुनून भरा लेकिन अंततः पवित्र हुआ सच्चा प्रेम,
और सबसे ऊपर अलियोशा और जोसीमा का वो सक्रिय प्रेम जो विनम्र है, कर्म में दिखाई देता है और जैसे पूरी इंसानियत को अपने गले लगाता है।
दोस्तोयेव्स्की की कहने की शैली भी कमाल की है, वो पॉलीफोनी मतलब बहुस्वरता, जहाँ हर किरदार की आवाज को बराबर वजन मिलता है।
वो कहानी सुना कौन रहा है? एक गुमनाम सा इतिवृत्तकार जो कहता है कि वो शहर का ही रहने वाला है, वो सब कुछ नहीं जानता, कभी कभी अटकने लगाता है, कभी सीधे पाठक से बात करने लगता है।
इससे कहानी में एक अजीब सी नज़दीकी भी आती है और थोड़ी अनिश्चितता भी बनी रहती है।
संवाद बहुत नाटकीय हैं और बहुत गहरे। मटकी वो बैठक, इवान का वो कबूलनामा वाला सीन, अदालत के भाषण
और प्रतीक, कितने सारे प्रतीक बिखरे पड़े हैं। द ग्रैंड इंक्विजिटर का पूरा रूपक,
गुरुशंका की सुनाई वो प्यास की कहानी जो बताती है कि एक छोटा सा नेकी का काम भी कैसे मुक्ति दिला सकता है।
वो 3000 रूबल जो जैसे लालच और अपराध का प्रतीक बन जाते हैं।
धरती को चूमना जो रूसी आत्मा और अपनी जमीन से जुड़ाव दिखाता है।
और उपन्यास यादगार कथनों से तो भरा पड़ा है। इवान का वो विचार जिसे अक्सर कहा जाता है, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है।
कहना, कर्म में प्रेम सपनों में प्रेम की तुलना में एक कठोर और भयानक चीज है।
ये असल जिंदगी में प्यार निभाने की मुश्किल को दिखाता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ ख्यालों में ही इंसानियत से प्यार करते रहें।
और जोसीमा की ये बात भी कितनी गहरी है, मनुष्य से उसके पाप में भी प्रेम करो, क्योंकि ये दिव्य प्रेम का स्वरूप है और पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रेम है।
मतलब इंसान से नफरत मत करो, उसके गुनाह से करो, पर उसे फिर भी प्यार करो, बिना शर्त करुणा।
और अंत में अलियोशा का बच्चों से कहना, आइए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हम दयालु बने, फिर ईमानदार, और फिर हम एक दूसरे को कभी न भूलें, किसी अच्छी स्मृति को न भूलें और उसके सामने झुकें।
ये कितनी बड़ी बात है कि बचपन की एक अच्छी याद भी पूरी जिंदगी के लिए नैतिक दिशा दे सकती है। नैतिकता शायद नियमों में नहीं बल्कि रिश्तों और यादों में बसती है।
द ब्रदर्स कारामाज़ोव पढ़ना वाकई एक झकझोर देने वाला अनुभव है। आप किरदारों के साथ उनके द्वंद्व में, उनकी पीड़ा में, उनके सवालों में जैसे डूब जाते हैं।
हाँ, आप इवान के तर्कों से शायद सहमत हो सकते हैं, दिमित्री के जुनून से सहानुभूति रख सकते हैं, अलियोशा की अच्छाई से प्रेरित हो सकते हैं।
ये उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता बल्कि गहरे सवाल छोड़ जाता है पाठक के मन में।
ये हमें अपने विश्वासों पर, अपनी नैतिकता पर, दुख और प्रेम के अर्थ पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।
ये दिखाता है कि इंसान का दिल ही वो मैदान है जहां अच्छाई और बुराई की, या कहें ईश्वर और शैतान की लड़ाई लगातार चलती रहती है।
शायद सबसे बड़ी बात जो ये उपन्यास सिखाता है वो ये है कि सबसे घने अंधेरे और गहरे संदेह के बीच भी करुणा और प्रेम का एक छोटा सा दिया रास्ता दिखा सकता है।
सत्य शायद किसी बौद्धिक निश्चितता में नहीं मिलता बल्कि प्रेम करने और जिम्मेदारी उठाने के साहस में मिलता है।
ये उपन्यास हमें मानव हृदय के अंदर अच्छाई और बुराई के उस निरंतर युद्ध को दिखाता है।
लेकिन साथ ही ये भी कि गहरी निराशा और संदेह के बीच भी प्रेम और आस्था मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।